आकार से जो है वो भी दो आकार से इसे बहुत ही बड़ा है। सिंहासन का मतलब क्या है? ये आकाश में सिंहासन रखा हुआ है, आकाश में कोई सिंहासन नहीं रखा हुआ है, लेकिन ये उनकी सेज की बात बताई। तो परमात्मा बात है उनके धाम का रहने वाला, उनके से उनके आसनधारी, बुद्धियों से बहुत उनकी सेज में रहता है, परे के परे, जिसको कोई त्रास नहीं कर सकता। ऐसे ऊंची स्टेज में रहने वाला बाप नीचे स्टेज में आता है, बच्चों को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। जैसे कोई डूब जाता है तो डूबने वाले को निकालने के लिए क्या करते हैं? गोता लगाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, खुद नीचे और डूबने वाले को ऊपर लाना पड़ता है। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को कि फिर से आओ। ऋतु माने क्या होता है? फिर से माना क्या होता है? दोबारा। ऐसे नहीं कलप पहले आए थे तो आओ, वो तो पलप पलप आते ही रहते, लेकिन यहाँ फिर से का मतलब है कि यदि कि आज में भी परमात्मा आया और ब्राह्मणों को जन्म मिला पहला, ब्राह्मणों को एक जन्म कहा जाता है या द्विजन्म कहा जाता है? द्विज कहा जाता है, द्वि माना दो और ज माना जन्म लेना, दो बार जन्म लेने वाला। तो कौन से दो जन्म? एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक का भी गायन है शास्त्र में क्या? लौकिकता का शास्त्र में गायन होगा क्या? नहीं, अलौकिक में ही दो जन्म का मतलब एक बच्चे के रूप में जन्म और दूसरा जन्म होता है जब यज्ञों का भी धारण करते हैं। अर्थात तीन सूत्रों का ज्ञान बुद्धि में धारण किया जाए, जीवन में धारण किया जाए। कौन से तीन सूत्र? स्थापना, पालना और विनाश। कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु, कौन है शंकर? ये तीन मूर्तियों का पूरा ज्ञान बुद्धि में धारण हो जाए तो उसको कहेंगे यज्ञों पर ही धारण करने वाला पक्का ब्रह्म। तो हुआ दिव्य दूसरा जन्म। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में पक्के ब्राह्मण वो हैं जिन्होंने बुद्धि में ये यज्ञोपदी से धारण कर लिया है, यानी तीन ज्ञान के जो सूत्र हैं सूत्रधारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचान लिया। अगर पहचान लिया तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, अगर नहीं पहचाना तो अधूरा ब्राह्मण। इसलिए यहाँ कहा फिर से आओ। फिर से आओ का मतलब क्या हुआ? एक बार यदि के आज में भी परमात्मा आया और जब आया तो प्रत्यक्ष हुआ। इस तरह प्रत्यक्ष हुआ, पश्चिम में प्रत्यक्ष हुआ या पूरब में प्रत्यक्ष हुआ? पश्चिम में विदेशियों के द्वारा पहले बाप प्रत्यक्ष होते। पश्चिम में कौन सी सभ्यता हुई? विदेशी सभ्यता। और पूरब में स्वदेशी सभ्यता। पहले स्वदेशी पहचानते हैं बाप को कि पहले विदेशी पहचानते हैं? विदेशी पहले बाप को पहचानते। पश्चिम में सूर्य होगा, लेकिन ये नियम बना हुआ है कि प्राप्ति भारतवासी ही करता। जिनके दिल में जिनके दिमाग में प्योरिटी के प्रति आकर्षण होता है, पश्चिमी सभ्यता में अभिचारी व्यक्तियों की तरफ कोई बढ़ावा नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इसलिए वो परमात्मा को पहले पहचानते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाता। जो वर्षा लेना चाहिए वो वर्षा नहीं लेता, वो शूटिंग यज्ञ में भी लेती। यहाँ कहा फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है। क्यों आओ फिर से? आए तो थे लेकिन क्या हुआ, हम माया के स्वरूप को नहीं पहचान सके, माया रावण को नहीं पहचान सके। दो नाम दिए, माया और रावण। ये रूप अगर हमने पहचान लिया होता तो माया की चुंगल में नहीं फंसते, तो माया का परछावा हमारे ऊपर पड़ गया। इसलिए फिर से आओ, अथवा कहें कि रावण राजी हो पड़े, साथ दुखी ही दुखी। कैसे भी हम साथ भ्रष्टाचारी पति हैं, ऐसे आचारी हैं, भ्रष्ट आचारी, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने की हमारी रद पड़ी हुई है। तो कथित हूँ तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संग में गया था, दो बार कल्प बोल देते, तीन तीन बार कल्प बोलने की क्या जरूरत, कहीं तीन बार बोलते कहीं चार बार भी बोलते। कल्प पहले में कल्प 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 के संग में गया था, बोलने वाला कोई चरिया खरिया तो है नहीं, आलसी फालतू ऐसे ही शब्दों को बोलता रहता है। पागलों पागलों का बोलना और कवियों का बोलना और कवियों का कभी जो ज्ञान सुनी सिवे है उसका बोलना, उसमें अंतर तो जरूर है। कल्प कल्प का यहाँ मतलब है कि हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं समझ में, माना हर युग में कोई न कोई वर्ण विशेष की आत्माएं अपना शूटिंग का कार्य संपन्न करें। ये संगम की ही बात है। सत्य प्रधान सत्य, इसमें देवता गण पहले फर्स्ट तीन की शूटिंग होती है, देवता गण की आत्माएं चार अवस्थाओं से पहले गुजरती है अपने शूटिंग की लेता में। कौन सा टाइम है उसका? सन 36-35 से यदि शुरू हुआ, जबकि आदि ब्रह्मा की एक साक्षा वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश, और 100 साल ब्रह्मा के पूरे होने चाहिए, सब पूरे होते 76। ये 76 तक का पीरियड सचिवी देवतावरण की आत्माओं का शूटिंग का पीरियड है। ये देवतावाणी की आत्माएं चार अवस्थाओं में गुजर जाती है, तो जैसे कि एक कल्प पूरा हो जाता, तो प्रधान उस समय कहेंगे जब त्रासी में एक बाप का साकार संग था, सतो सामान्य उस समय कहेंगे जब माउंट आबू में दुनिया वालों का भी संग हुआ, क्योंकि सेवा के यहां बाहर जाना पड़ता था और बीच बीच में वो सुन कल सुन का आर्डर मिला हुआ था, तो बच्चे बाप के पास जो आते थे आर्डर को फॉलो करते थे, उनकी अवस्था भले दुनिया में जाने से नीचे गिरती थी लेकिन बाप के साकार संग में आने के कारण फिर नीचे थी, तो अवस्था नीचे गिरी हुई नहीं कहेंगे। माने सतो प्रधान और सतो नामान्यता की शूटिंग कराची और माउंट आबू में हुई जब तक मम्मा बाबा जी बिक रहे, जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो जो साकार संघ था वो चला गया, गुप्त हो गया, वाणी से परे हो गया, लेकिन चला नहीं गया, रहा तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया का ही पहले परिवर्तन करना है, बाहर की दुनिया का तो बाद में परिवर्तन होगा, पांच जड़ तत्वों वाली बड़ी दुनिया का परिवर्तन तो बहुत बाद में होगा, लेकिन पहले तो आत्मा रूपी बच्चों का परिवर्तन होगा, तो चला नहीं गया लेकिन आंखों से ओझल हो गया, वान पत्ति हो गया, वाणी से पर ऊपर के पार्ट बजा गया। उसकी सन्मुख होती है, उसे सन्मुख को देख करके फॉलो करना सहज होता है और बुद्धियों से जो चीज खींची जाती है उसमें कभी स्मृति रहती है कभी खुशी नहीं रहती। इसलिए जैसे कि ज्ञान सूर्य छिपा तो ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात शुरू हुई, जो शुरुआत हुई इसलिए कहेंगे रजो प्रधान करें। और जब से मेले मलाखड़े शुरू हुए 73 से तब से तमो प्रधानता का पीरियड यज्ञ के अंदर देवता वर्ण की आत्मा के लिए शुरू होगी। ढेर की ढेर जात जाति की आत्मा दृष्टि दृष्टि के कनेक्शन में आने लगे और जब ढेर के ढेर पति का आत्मा कनेक्शन में आएंगी तो उनके संग करने को जरूरी है। एक तो मनुष्य गुरुओं का संग, वो तो वही पति तो बनाने वाला, परमात्मा सत्ता तो साकार में संग रहा नहीं, और फिर दुनियावी मनुष्यों का संग, नदियों नदियों का मेला, ज्ञान सागर का मेला तो कहेंगे नहीं सृष्टि कहेंगे, तो हुआ पतन जो कलयुग की श्रुति माना चार अवस्थाओं की श्रुति जो है जब हो जाती है पूरी तो फिर दूसरा कल्प शुरू है। कौन सी युग की श्रुति का? त्रेता युग की श्रुति यानी छठी वर्ण की आत्माओं की श्रुति का कार्य शुरू, वो भी चार अवस्थाओं के पता होता है लेकिन मल्टीप्लीकेशन होता जाता है। पहले तीन का सात सामान इकट्ठा करने में टाइम लगता है, दूसरे सीन को शूट करने में रिहर्सल करने में इतनी मेहनत नहीं लगती। तो वो पीरियड है 12 वर्ष, सेकेंडरी ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा उसकी एज पूरी हुई 76 में, और सेकेंडरी ब्रह्मा कौन? शिव बाप जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, कौन कौन साथ में आता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर भी होते। तो विष्णु का रूप तो कोई अलग से रूप नहीं बताया, वो तो दो का कॉम्बिनेशन है, लेकिन शंकर और ब्रह्मा ये दो रूप हुए। शंकर को शिव शंकर मिला के एक कर दिया है, क्योंकि शंकर को भी जन्म मरण में नहीं दिखाया और शिव को भी जन्म मरण में नहीं दिखाते। शंकर के लिए कहते अमोघ वीर्य, अमोघ वीर्य होने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। यह तो सारी बेहद की बात है, यहाँ तो ज्ञानगिरी की बात है। ऐसा ज्ञानगिरी धारण करने वाला जो कभी फलित नहीं होता, माना उसका ज्ञान कभी उससे अलग नहीं हो पाता। मोस्टली जीवन में आते हुए ऐसा होता है कि ज्ञान तो हम बुद्धि में धारण कर लेते हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ज्ञान बुद्धि में से खिसक जाता है, भूल जाते हैं। तो परमात्मा पार्ट का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, शंकर का स्वरूप, वो अनित्य बुद्धि बनने वाला नहीं। कैसी भी माया की कोई भी परिस्थिति आ जाए, माया का कोई भी विकराल रूप आ जाए, लेकिन परमात्मा पार्टधारी जो स्वरूप है वो कभी अपने तेज से नीचे नहीं आए, अटल होता है, अखंड पार्ट बजाने वाला। इसलिए ज्ञान में जीना और ज्ञान में मरना ये नहीं होता। तो शिव के लिए भी जन्म मरण रहित कहा गया, तो शंकर के लिए भी जन्म मरण रहित कहा गया, इसलिए दोनों को मिला करके एक कर। वास्तव में दोनों आत्माएं तो अलग अलग है। शंकर को याद की स्टेज में दिखाते हैं तो याद करता है, तो जरूर उसके ऊपर पापों का बोझ है, तब तो याद करता है। संपन्न स्टेज जो है वो दिखाई गई याद की अवस्था है। कहने का मतलब ये हुआ कि राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा बाप का पार्ट बजाती है, कृष्ण वाली आत्मा बच्चे का पार्ट बजाती है। तो बच्चे के रूप में जो मृदुल पाठ है वो बच्चे के द्वारा ही का प्रत्यक्ष होता है। तो त्रेता युद्ध शूटिंग में राम वाली आत्मा के द्वारा परमात्मा शिव प्रत्यक्ष तो होते हैं दोबारा, लेकिन पूर्ण रीति से प्रत्यक्ष नहीं हो पाते। क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो पाते? क्योंकि वो प्रत्यक्षता भी विदेशी बच्चों के द्वारा शुरू होती है। जो बीज है सारी शक्ति के, उन बीजों के भी जो बीज है, चार मुख्य धर्मों, चार मुख्य धर्मों के चार मुख्य बीज, जिन्हें चार सफेद घोड़ों के रूप से दिखाया जाता है, वो बीज भी मनुष्य बनते, लेकिन उनमें एक पहला बीज तो भारतीय, बाकी के तीन बीज है इस्लामी बौद्ध शिक्षण के बीज, वो बाप को संक्षेप में प्रत्यक्ष करते हैं राम बाप। जो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के फिर पुरुषार्थ करती है, और पूर्व जन्म की प्रारब्ध के कारण लास्ट में आने पर भी स्वास्थ्य जाती है। त्रेता युग की शूटिंग का जो लक्ष्य है वो उतना लंबा नहीं है जितना देवता बनने के लिए टाइम लग जाता है, वो सिर्फ 12 वर्ष के लिए है। यानी सेकेंडरी जन्म सत्य वाली सोल जो टाइटल धारण करता है अपने बाप का, कौन सा टाइटल? प्रजापिता ब्रह्म। वो प्रजापिता ब्रह्मा टाइटल धारी ब्रह्मा जो है वो भी उसकी आयु 89 में जाकर के पूरी होती है, 88-89। इसका प्रूफ ये कि मुरली में बोला है कराची से मुरली निकलती चली आई, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठ करके लिखते थे और बाप लिखाते थे। साफ जाहिर हो गया कि जब कराची में आकर के सारा संगठन इकट्ठा हुआ है सिंध हैदराबाद से, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो कन्या माताओं को मौका मिल गया बाहर निकलने का, बाबा के पास पहुंचने का, उस समय से मुझे निकलना शुरू हुई है ब्रह्मा के लिए। और पता लेके चलता है कि मैंने बाप भगवान मुझे किया, कैसे पता चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं तभी तो पता चलता है कि मेरे साथ भगवान। तो ब्रह्मा के मुख से कराची से मुर्गियां निकलना शुरू हुई और कराची से ही परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश करना शुरू किया। उससे पहले कोई दूसरे बच्चे थे जिनमें शिव बाप की प्रवेश कर वाली आत्मा जिनके लिए मुर्गियों ने बोला है, ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी। कौन से मम्मा बाबा को? ब्रह्मा सरस्वती ड्रिल कराती थी, टीचर होकर के सामने बैठती थी। आज वो बच्चे ये दिन इसका मतलब ये हुआ कि यदि के आदि में ऐसी सशक्त आत्माएं थी जो मम्मा बाबा जैसी आत्माओं को भी कंट्रोल कर सकती थी, तो जो आदि में हुआ तो अंत में भी जरूर होगा। तो वो यात्रा दोबारा प्रत्यक्ष होती है और उनमें ब्रह्मा की सोल माना दादा लेखराज की सोल प्रवेश करती है। प्रवेश करके अपना जो पार्ट है ब्रह्मा की एज का 100 साल का वो भी पूरा होता है। यानी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब परमात्मा शिव ने दादा लेखराज में पहले प्रवेश किया, उस समय उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 7 साल। और उसने 7 साल में 40 वर्ष और दो दिन, 88-89 ये पीरियड हुआ सेकेंडरी ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा उसकी 100 साल एज पूरी होने का। ये 100 साल पूरे होते तो वो होती है त्रेता युग की चंद्रवंश की, ज्ञान चंद्रमा के द्वारा जो कार्य विशेष होता है। विशेष कार्य क्यों कहा जाए? विशेष इसलिए कहा जाए कि 76 तक तो परमात्मा शिव ने विशेष कार्य किया बच्चों के द्वारा सेवा करने का, लेकिन 76 से ब्रह्मा की सोल भी बच्चों में प्रवेश होकर के पाठ बजाते हैं। तो बच्चे समझ लेते हैं कि हम सेवा करते हैं, लेकिन सारी सेवा करता कौन है? शिव और ब्रह्मा की सोल। बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके टाइम टू टाइम दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं। जो अहंकारी बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते, वो समझते हमने ऐसा किया। तमो प्रधान बने पड़े 84 जन्म के तमो प्रधान, हम कहाँ से सबको प्रधान सेवा करेंगे? सत्य की स्थापना का काम हमारे द्वारा कैसे होगा? ये तो बाप दादा का ही काम है, वो हमसे काम कराता है। हाँ, कराता उन्हीं से जो हिम्मत करते हैं। तो हिम्मत बच्चों की और मदद बाप दादा। तो 76 से लेकर के 89 तक का पीरियड हुआ 23 युति, इसमें भी चार अवस्थाएं, क्योंकि इसमें जो चार अवस्थाएं जिनकी प्रत्यक्ष होती है वो है बीज रूपाकर। जड़ों के भाग में बैठी हुई नहीं, जड़ों के भी कोई बीज है जो ये भी आदि में भी है, और फिर लास्ट में भी प्रत्यक्ष होते हैं 76 के बाद। इस तरह हर कल्प की शूटिंग में, हर वर्ण की शूटिंग में चार अवस्थाएं कमाई हुई। जब तक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष रहता है तब तक है ब्रह्मा का दिन ततो प्रधान ततो सामान्य के, और जब वो अप्रत्यक्ष हो जाता है, गुप्त हो जाता है, चाहे आधारभूत आत्माओं के लिए सत्य शूटिंग में और चाहे बीज रूप आत्माओं के लिए त्रेता शूटिंग में, तो जब गुप्त हो जाता है तो ब्रह्मा की लीला और ब्राह्मण की लीला, तो चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है शूटिंग की जड़ी। तो कल्प 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 ये जो तीन बार शब्द बोला है ये इसीलिए संगम के लिए बोला है। इसके लिए शास्त्र में लिख दिया संभवामी युग योगी, मैं हर युग के अंत में आता हूँ। हर युग के अंत में नहीं आता है, 12.5 वर्ष के बाद उसे आने की बार बार दरकार नहीं है। वो आता तो एक ही बार है, लेकिन जब आता है तो हर युग की शूटिंग के अंत में जिसे परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता होती है दुनिया में भी और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विशेष। इसलिए यहाँ बोला कि मैं कल्प 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 के संगम में भी आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया का 5000 वर्ष पहले कब हुआ? यदि के आदमी कहें 36-37 ऐसे कल्प के संगम में भी आया हुआ हूँ। बाप आकर के आथत देते हैं, बच्चे देर से कर लो, उसको आथत देते हैं, धैर्य देते हैं बच्चों को, बच्चे तुम घबराओ मत, कोई फिक्र मत करो, ये मेरा ही पार्ट है। क्या कि कल्प कल्प संगम में भी आकर के नए संगठन की स्थापना कर देता हूँ। नया संगठन बनाना मैंने नई दुनिया बनाना, ब्राह्मण की संगम की दुनिया में नया संगठन बना देना, संगठन माना माला बना देना, नया मकान बना देना, नया किला बना देना। वो जड़ ईंटें होती हैं और ये कैसे ईंटों का किला तैयार करता हूँ, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर के फिर से राज्यों की गाओ, पतित दुनिया को आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि जा करके पावन बनाओ, आओ पढ़ाई पढ़ा के चले जाओ, फिर हम ऊपर बैठे बैठे तुम पावन बनाते रहो, हम पावन बनते रहे, ऐसे नहीं। क्या बोला? आकर के पावन बनाओ। क्यों आकर के ही पावन बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर बैठा रहे और हम याद करते रहे और पावन बन जाए, पतित कैसे बने? संघ के रंग में आकर के पतित बने ना, अनेकों के संघ के रंग में आए तो भारतवासी पतित बने, एक के संघ के रंग से पावन बनेंगे।
इस समय सब नास्तिक आर्थम निर्धन के हैं, धनी धोरी को नहीं पहचानते। आर्थम उनको कहा जाता है जिनको दुनिया में अशांति, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर रावण के राज्य से छुड़ा करके राम राज्य सुखधाम ले जाने के लिए आए। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। क्या क्या फर्ज है मेरा? कि रावण राज्य से छुड़ाता हूँ और राम राज्य सुखधाम में ले जाता हूँ। तो राम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। राम चाहिए तो राम का राज्य होगा, और राम का राज्य होगा तो सुखधाम होगा। रावण का राज्य अभी चल रहा है तो रावण कहाँ होता है? रावण सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में प्रत्यक्ष होता है? नहीं, राम भी प्रत्यक्ष होता है संगम युग में और रावण भी प्रत्यक्ष होता है संगम युग में। रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि ऊपर से आने वाले धर्म पिता है वो कोई रावण का पाठ बजाते हैं, नहीं, तो सतो प्रधान सोल आती है परम धाम से, वो तो सात्विक स्टेज का पाठ बजाती है, उसको रावण नहीं कहेंगे। सात्विक स्टेज में जो आत्मा आती है किसी को दुख देती भी नहीं और दुख लेती भी नहीं। जैसे क्रैश उसने जीसस में प्रवेश किया तो दुख किसने भोगा? शरीरधारी ने या ऊपर से आने वाली आत्मा ने? शरीरधारी ने दुख भोग। तो उन धर्म पिताओं को रावण का रूप नहीं कहेंगे, लेकिन वो धर्म पिताएं जिसमें प्रवेश करते हैं वो सच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बनती है। वो वहां भी कन्वर्ट हो जाती है तो जब परमात्मा बाप इस संगम युग में आता है वही आत्माएं फिर कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनती है और फिर माया के चंबे में आ जाती है। उनके अनेक जन्म के संस्कार ही कन्वर्ट होने के, इसलिए वो फिर यहाँ भी कन्वर्ट हो जाती है। परमात्मा बाप को धोखा देती है, अपनी मनमत चलाती है, ईश्वरीय मत पर नहीं चल सकती, ईश्वरीय महावाक्यों को नहीं उठा सकती, देहधारियों के चक्कर में फंस जाती है, लोक लाज के चक्कर में आ जाती, दुनिया का प्रभाव पड़ जाता है। परमात्मा बाप जो गुप्त पाठ बजाता है उसके प्रभाव को नहीं बरत पाते। तो रावण राज्य कौन सी दुनिया में हुआ? बाहर की दुनिया के लिए कहीं रावण राज्य नहीं। रावण का जो रूप है, चरित्र है, जिसका चित्र बनता है, वो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तैयार होता है। जब 10 चेहरे हैं, चित्र हैं, तो चरित्र पकड़ने वाले भी कोई होंगे ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतनी बड़ी दुनिया है तो इतनी बड़ी दुनिया में कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। तो जब नंबरवार होंगे तो 100% कोई कामी भी होगा, 100% कोई क्रोधी पाठ बजाने वाला भी होगा रंगमंच पर, इस समय प्रत्यक्ष। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही ऊंची से ऊंचे और नीचे से नीचे पाठधारी प्रत्यक्ष होते। उन रावण के चुंबन से छुड़ा कर तुमको राम राज्य मिलेगा। कहते भी हैं राम है एक और सीताएं हैं अनेक। तुम सब सीताएं रावण की जेल में फंसी हुई है, तुम में किसी में ताकत नहीं है जो टक्कर लेकर के और रावण को खलास कर सको। ये मेरा ही काम है, तुम सब सीताएं रावण के चुंगल में फंस गई, मैं राम आकर के तुमको छुड़ाता हूँ गुरुओं की जंजीरों से। रावण कौन? ये गुरु लोग। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। सभी कहते हैं बेहद के बाबा अभी ऊपर से तख्त छोड़ करके आए हो, ऊपर से नीचे आने की जरूरत है रावण से छुड़ाने के लिए? नहीं। अगर ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे स्टेज आकर के पार्ट नहीं बजाएगा, देवताओं जैसा पार्ट बजाएगा तो ये पुरानी दुनिया खलास नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं का काल, देवताओं के गुण और परमात्मा के गुण में बहुत अंतर है। देवताओं के गुण क्या है? सर्वगुण संपन्न तुला कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कृष्ण बच्चे के गुण है, देवताओं के गुण है, लेकिन परमात्मा के ये गुण नहीं। परमात्मा अगर इन धर्म गुणों को धारण करने लगे तो इस दुनिया का विनाश नहीं हो सकता, पाप आत्माओं का खात्मा नहीं हो सकता, अनेक धर्मों का विनाश नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है जबकि परमात्मा वो पार्ट बजाए। कौन सा? जो देवताओं के विपरीत पार्ट है। देवताओं के विपरीत कौन सा पार्ट है? देवताएं होते हैं अहिंसक और बाप क्या बनता है? हिंसक। क्योंकि वो सबका बाप है। देवताओं का भी बाप है तो असुरों का भी बाप, हिंसकों का भी बाप है और व्यभिचारियों का भी बाप है। अब व्यभिचारी देवताओं का भी बाप है तो बाप में तो हर प्रकार के गुण हैं। उसका नाम ही है श्याम सुंदर। यह सती जी कृष्ण का नाम है। ब्रह्म महोत्सव में हम आत्मा रहे, यही है जीवात्मा। वहाँ होता है आत्माओं का स्थान जिनको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का। इस समय सब नाटक नाटकी को कहा जाता है। जो रचयिता बाप और उसकी रचना को न जाने, रचयिता बाप कौन है और उसकी सचला रचना कौन है? कौन है रचयिता बाप कौन है? कहेंगे बिंदी। अरे बिंदी को 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं दिए, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की आत्माएं भी बिंदी है, तो पता नहीं चलेगा कौन सी आत्मा रचयिता बाप है। और फिर बिंदु को रचयिता कहेंगे। आत्मा स्वरूप में जो बिंदु है वो अगर हमारा अविनाशी है या रचि जाने वाली और समस्त होने वाली है, तो अगर हमारा अविनाशी तो आत्माओं के बाप को, बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को कोई रचयिता नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माएं अविनाशी है, उनका विनाश ही नहीं होता, तो रचने का सवाल कहाँ पैदा होता है? तो किसका रचयिता है? नई शक्ति का रचयिता है, ब्राह्मणों की नई दुनिया का रचयिता है। तो साकार में होगा या निराकार होगा? जरूर ब्राह्मण साकार है तो ब्राह्मणों का रचयिता भी साकार होगा। शक्ति साकार है तो साकार शक्ति का बाप भी साकार है। वो जो कि बिंदु बाप इस मनुष्य शक्ति का जो बीज है जिसे आदम कहते हैं मुसलमान लोग, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, हिंदू लोग उसको आदिदेव कहते हैं और जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं। है एक ही शक्ति का आदि पिता, मनुष्यों का पिता। उसमें वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु में प्रवेश करता है और प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है। जब तक वो प्रवेश न हो तब तक आदि पिता भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और आदि पिता के बगैर जीव ज्योति बिंदु की पहचान भी किसी को नहीं हो सकता। ये अनादि अविनाशी प्रवृत्ति है किसी किसी मनुष्यों के पिता की और परमात्मा के बीच। एक है भोक्ता और एक है अभोक्ता। सब नास्तिक है, उस रचयिता बाप को कोई नहीं जानता। जो रचयिता निराकार बाप इस शक्ति पर साकार में रह करके निराकार विशेष का पार्ट बजाता। निराकार का मतलब ये नहीं बिंदु, निराकार का मतलब निराकारी विशेष में रहने वाला, निराकारी शेख की यादगार है शिवलिंग, जिसको हाथ पांव नाक कान कान नहीं दिखाए हैं चित्रकार ने, ये नहीं दिखाए कि ऐसी शेख उसने बुद्धि से धारण की।
कर्मेंद्रियों का भान उसको नहीं रहा। अगर कर्मेंद्रिया शरीर में से हटा दी जाए, नाक कान हाथ पांव आदि अलग कर दिए जाए तो क्या बचेगा? लिंग ही बचेगा ना, लिंगाकार रूप ही तो बचेगा। इसलिए जगन्नाथ के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में गोल काली लकड़ी दिखाते, उसमें आंख नाक कान बनाए देते। वास्तव में वो लिंगाकार स्वरूप इस बात की यादगार है कि परमात्मा निराकारी स्टेट को धारण करने वाला, इसलिए शिवलिंग में बिंदु भी दिखाते। सोमनाथ के मंदिर में बिंदु की यादगार क्या थी? हीरा। तो हीरा है सिर्फ जो कि बिंदु की यादगार, और लिंग है साकार स्वरूप की यादगार। जो पुरुषार्थ करके ऐसा स्वरूप धारण करता है, ऐसी स्थिति धारण करता है जो निराकारी इससे संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, तो सब नास्तिक। उस रचय का बाप को कोई नहीं जानते और उसकी रचना को भी नहीं जानते। आप एक तो बाप को नहीं जानते, दूसरा कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? संसार में वो एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है या सर्वव्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है, वर्षा देता है? एक व्यापी होकर के संसार में आकर के वर्षा देता है, तो शांति का सुरक्षा बुलाते दिए है परम पिता परमात्मा, जो कि दुखी है। ये गीत भी इस समय पर गाया हुआ है। कौन सा? छोड़ दीजिए आकाश सिंहासन। कौन से समय पर गाया हुआ है? जबकि सब नीचे स्टेज में गिरे हुए, सब पतित स्टेज में अपने को अंदर के अनुभव करते हैं। बड़े से बड़े पवित्र रहने वाले सन्यासी भी क्यों हैं, लेकिन वो भी अंदर से फील करते हैं कि हम वास्तव में पावन देवता नहीं है, हम भी अपवित्र। बच्चों की क्या भूल हुई है जो बाप को भूले हुए हैं? गीता का भगवान जिसने सहज राज्य सिखलाया, अनाथों को सनातन बनाया, दोनों को नहीं जान। गाते भी हैं हे अनाथों को सनातन बनाने वाले, अनाथ को सनातन भारत को ही बनाती हूँ, भारत ही सनाथ बनता और भारत ही अनाथ बनता। भारत सदा सुखी था, प्योरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, यह आसन भारत महान पवित्र था, बहुत प्योरिटी थी। जाते भी है सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ से ये अनाथ बन गए। उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाए। वो समझते हैं गौ आदि को मारना कोई हिंसा है, तो जानवर गौ को मारना कोई हिंसा है क्या? कौन सी गौ को मारना हिंसा है? गौ शास्त्रों में किसको कहा गया? जानवर गौ में किसको कहा गया? नहीं, गौ कहा जाता है सीधे साधे प्राणी। कौन सा सीधा साधा प्राणी? जिसके शरीर में सात देवताओं का निवास बताया जाता है। कहते हैं बहू की पूछ पकड़ करके देवताएं स्वर्ग में चढ़ गए, तो पूछ कौन दिए? देह अभिमानी की पूछ है, उस देह अभिमानी की पूछ में जितने भी पुरुष होते हैं वो सब दुर्योधन दुस्साहसन का पार्ट बजाने वाले होते हैं। वो तो बहू का आधार लेके ऊंची स्टेज में जाने की, नहीं तो वो ऊंची स्टेज में जा नहीं सकते। शक्तियों का आधार लिए बगैर वो साथ में सीखा पर नहीं आ सकता। इतने सीखे नहीं बन सकते जो देह अभिमान को दलाए दे और पांडव पक्के बन जाए। वो तब ही दलाए सकते हैं जबकि ध्रुव पद पाने वाली जो कभी उनके साथ दे। तो कहा है कि शक्तियों के द्वारा परमात्मा शिव इस संसार में प्रकट होगा। शक्तियों के द्वारा ही सारा कार्य संपन्न करता है, क्यों पांडवों के द्वारा क्यों नहीं? शक्तियों से सड़क का गेट क्यों खुलवाया? शक्तियां सड़क का द्वार खोलने के निमित्त क्यों बनी? कहते हैं जो ब्रह्मा द्वारा सड़क के गेट खुलवाता हूँ, तो पुरुष रूप धारी ब्रह्मा के द्वारा या जो प्रैक्टिकल स्वरूप है ब्रह्मा उसके द्वारा, ब्रह्म ना बड़ी और माँ माने माँ, ब्रह्मा माने बड़ी, गाड़ी मुठ वाले ब्रह्मा का स्वरूप को गायन पूजन नहीं होता, गायन है पूजन नहीं होता, लेकिन जगदम्बा का पूजन होता है। मूल्य में बोला है ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है, तो दाढ़ी मूछ वाला जगदम्बा है क्या? दाढ़ी मूछ वाला जगदम्बा होता तो उसकी पूजा होती, मंदिर बनते, मूर्तियां बनती, लेकिन नहीं, वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा कहीं छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है और साक्षात जगदम्बा के रूप में संसार में सत्यक्ष होता है। वो जगदम्बा भी आदि शक्ति है, आदि रचना है परमात्मा बाप की, उस जगदम्बा को परमात्मा बाप के विश्व की बाधिकारी का वर्तन और जगदम्बा से सब बच्चों को मिलता, तो जगदम्बा ही निमित्त बनती है, क्षत्रिया ही निमित्त बनती है, तो प्रदेश होने की कोई पुरुष निमित्त नहीं बनता। तो समझते हैं तो गौ आदि को मारना हिंसा तो कौन सी गौ की बात है? कामधेनु गौ कहा गया है तो कोई जानवर गुरु की बात है क्या? नहीं, भारत की कन्याएं माताएं उनको ही गौ कहा जाता है, विदेशों की कन्या माताओं को गौ नहीं कहता है, कहा जाता कहेंगे क्यों? क्यों नहीं कहेंगे कि गौ की एक विशेषता होती है गौ के स्वभाव की, कि जिस खूंटे को उसको बांध दिया जाए जीवन भर उसी खूंटे से बंध गए, तो भारत की कन्याओं माताओं की विशेषता है कि अपने जीवन में जिस क्षेत्र को उनको बांधा गया सारा जीवन वहाँ बिताती, और विदेशी कन्या माता ऐसा कार्य नहीं बजाती, वहाँ तो तलाक देने की कथा है, डायवर्स देने की कथा है, एक छोड़ दूसरा दूसरा छोड़ तीसरा, तो उनको गौ नहीं कहेंगे। विदेशी नदियों में कोई स्नान नहीं करता है, विदेशी नदियों को कपित पावनी नहीं समझा जाता, कौन सी नदियों को कपित पावनी कहते हैं? भारत की नदियों को पतित पावन कहते हैं, तो कोई गर नदी की बात नहीं है, जानवर गौ की बात नहीं है, उस गौ के मारने की हिंसा की बात नहीं है, कौन से गौ के मारने की हिंसा की बात है? कैसा ही हमें गौ है, गौ काल कन्हैया की गौए कही जाती है, उन गौओं को जो हिंसा करता है कौन सी हिंसा? काम कतारी की, नैन बाणों से मारता है या वाइब्रेशन से मारता है, गंदे वाइब्रेशन फैलाकर अथवा कर्मेंद्रियों से कर्मणा से कोई भी कर्म करता है तो उसको क्या कहेंगे? गौ घात करने वाला, गौ की हिंसा करने वाला। बाप कहते एक दो पर काम कटारी चलाना ये बड़ी भारी हिंसा है, रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बनते हैं। भारत में तो कितना भाव होता है, भावना होती है, श्रद्धा होती है, ऐसे श्रद्धा विश्वास वाले भावना वाले देश में परमात्मा आते हैं, लेकिन रावण क्या हाल बनाए देता है? भगवान के आने के बावजूद भी रावण ऐसा विकराल रूप मायावी रूप धारण करता है तो सब भुलाई देता है, तो भगवान को फिर से बुलाते तो आकर के फिर से पतितों को पावन बनाए। बात कहते हैं नंबर वन दुश्मन है ये देह अभिमान, रावण को तो पांच विकारों का पुतला कहा जाता है, वो नंबर वन दुश्मन है या उसके भी कोई नंबर वन दुश्मन है? पांच विकारों का बाप कौन है? रावण का जब चित्त बनाते हैं तो ऊपर गधे का चित्त बनाते हैं और नीचे दस सिर दिखाए जाते, पांच पुरुष मुख पांच स्त्री मुख, तो जो गधे का सिर है वो क्या है? देह अभिमान, जैसे गधे में बेअभिमान होता है, उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ लेकिन जहाँ धूल देखेगा उनका फट से लुट जाए, तो देह अभिमान की धूल में लुट जाने वाला है। तो ये देह अभिमान है पांच विकारों का बाप। अगर ये देह अभिमान न आए तो पांच विकार पैदा ही नहीं होते। जिन्होंने अनाथ बनाया है ये पांच विकार हैं और इनका मूल है देह अभिमान। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये पांच विकार तुम्हारे दुश्मन हैं। बाप पूछते हैं, ये भारतवासी बच्चों सत्य में से तुम सनाथ थे, कितने सुखी थे? कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गए, नरक जो चला गया ना, चला गया मन नरक की दुनिया से चला गया। तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। जब कहते हैं स्वर्ग पधारा तो कहाँ से स्वर्ग पधारा? नरक से स्वर्ग पधारा। लेकिन ये भक्ति मार्ग में सबसे तो कहावत कहावत होती है, न समझते हैं कि ये दुनिया नरक है और न समय और न ये समझते हैं कि स्वर्ग का है, वो तो ऐसे ही कह देते हैं। वास्तव में जानते तो है कि आत्मा सही छोड़ करके फिर से जन्म लेती है कि कोई स्वर्ग का भी जन्म लेती है। नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे नरक में, और स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में मर जाएंगे। मरने का मतलब क्या हुआ? मरने का मतलब ये हुआ संगमी दुनिया में जो जीते भी मरते हैं वो ही शरीर रहते अनुभव कर सकते हैं कि हम स्वर्ग की दुनिया में बैठे, संगमी स्वर्ग का अनुभव करेंगे, बाप के बैठे का अनुभव करेंगे। अगर देह अभिमान से मरते नहीं है, इस देह और देह के संबंधों की दुनिया से अपने को मारा नहीं है, ये जीवित है, तो कभी भी कितना भी ज्ञान ले लें लेकिन वो उनका ज्ञान रावण का ज्ञान हो जाएगा, अपने को सुख शांति में अनुभव नहीं कर सकते। कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए दुनिया की नजरों में, चाहे भले ही कितने बड़े महारथी माने जाए लेकिन अंदर से उनको सुख शांति महसूस नहीं। तो ये भारत में कहावत है स्वर्ग पधारा, मर गया तो स्वर्ग पधारा। कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो कौन से मरने की बात है? शरीर से मरने की बात है क्या? शरीर से मरने वाला कोई स्वर्ग पधार नहीं सकता, कोई ग्रह नहीं। शरीर से मरने की बात नहीं है क्योंकि अभी स्वर्ग है ही नहीं, ये दुनिया ही नरक है, दुखदायी दुनिया है। तो दुखदायी वातावरण में जो शरीर छोड़ेगा अंत मचे तो गति होगी, तो क्या करना चाहिए? अपना वायुमंडल ऐसा सतो प्रधान ज्ञानी को बनाना चाहिए, अपना वायुमंडल ऐसा श्रेष्ठ बनाना चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान प्रवेश न करे। कोई भले हमको दुख दे ले लेकिन हम दुख ग्रहण न करें, न दुख दो और न दुख ले, ऐसी स्टेज अपनी बनाई। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने को आत्म दे अभिमान से परे हो जाए। इस दुनिया को अभी रौरव नरक कहा जाए, गर्व पुराण में कथाएं दी हुई है रौरव नरक की, और कोई ऐसी नदी विषय वैतरणी नहीं है, विषय सागर में सब बोते खाती रहती है। ये दुनिया ही संसार सागर है, विषय सागर, एक दो को काटते हैं दुखी करते रहते। बाप आकर के समझाते हैं ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ, बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक और अभी अभी स्वर्ग है, जिसके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है। नहीं, धनवान भी सुखी होते हैं, इस समय सारी दुनिया दुखी, धनवान दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी ही माता पिता, जिसके लिए तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि कौन से माता पिता है जिनकी कृपा से तुमको गले मिलते, कौन से नाच पिता है? क्या ब्रह्मा सरस्वती को कहें? अगर ब्रह्मा सरस्वती को कहें तो शुभ गलेरे भी होने चाहिए, लेकिन शुभ गलेरे को किसी को अभी महसूस नहीं हुए। तो गलेरे का मतलब ये नहीं है कि ईंटों का सुखो धाम और शांति धाम बनाए लिया तो सुखो शांति की दुनिया मिल गई, नहीं। ये तो अंदर की बात है, अंदर से ऐसा उमंग उत्साह पैदा हो, ऐसी देख प्राप्त हो जाए कि जिसमें आत्मा दुख का अनुभव ही न करे, दुख की दुनिया में रहते हुए भी आगे आने वाली दुनिया तो बहुत ही दुख की दुनिया होगी, जब कयामत बढ़ता हो चारों तरफ काल ही काल मंडराएगा, लेकिन उस समय जो बाप के बच्चे होंगे, जीते भी मरने की स्टेज वाले बच्चे होंगे, वो छुपी होंगे या चुकी होंगे? वो उस समय चुकी होंगे, और बाकी सब हाहाकार करके मौत से अपने शरीर को तो दो प्रकार की दुनिया हो गई, एक स्वर्ग की दुनिया जिसे दूसरे धर्म वाले पैराडाइज या जन्नत कहते, वो दुनिया का नजारा अभी सामने आए, और एक वो दुनिया जिसको दोजक कहते हैं, हेलमेट भार, जैसे भार में किसी कीड़े मकोड़े को डाल दो तो कैसे मरेगा, कुछ नहीं कर सकता, तड़प तड़प के मर जाता है। तो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, लेकिन मनुष्य को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की जाकर के आगे जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, राधा कृष्ण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो क्या दो रूप हो जाएंगे माता पिता के? शक्ति का माता पिता, सारी सृष्टि का माता पिता एक युगल होगा या दो युगल होंगे? एक युगल होगा, या तो राधा कृष्ण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, बात क्या है? बात अब समझ में आई कि वही राधा कृष्ण वाली आत्मा है जो सत्य में राधा कृष्ण रूप की बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष होती है, जन्म लेकर के वही आत्मा अभी शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है, और जिन ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है उनके द्वारा प्रत्यक्ष होती है। इसलिए कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक, बाप रचयिता है और उनकी रचना को कोई जानती है, कि सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया को पांच विकारों को कहा जाता है, संपत्ति दान भव, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं, साधु सन्यासी ये आशीर्वाद नहीं देते हैं क्या? संपत्तिवान भव वो भला आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो उनका आशीर्वाद जो है वो अल्पकाल का है, वो आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, लेकिन वो भी अल्पकाल का, पुत्रवान भव वो भी अल्पकाल का, क्यों? क्योंकि बल पुत्र पैदा हो जाए लेकिन कोई गारंटी गारंटी नहीं है कि वो जीवित ही रहेगा, सुखदायी होगा, बच्चा पैदा हो जाए और दुखदायी हो जाए, पुत्रवान भव ये वरदान हुआ या अभिशाप हो गया? अभिशाप हो गया, बच्चा पैदा हो और वो बच्चा माँ बाप के लिए दुखदायी बच जाए, तो पुत्रवान भव का वरदान हुआ या अभिशाप हो गया? अभिशाप हुआ ना, उसको वरदान के लिए, लेकिन परमात्मा बाप ये जो तीनों वरदान देते हैं इनमें किसी प्रकार की अभिशाप की तो बंद हो ही नहीं सकती, वरदान ही वरदान होता और अंतकाल का वरदान नहीं, 21 जन्म के लिए वरदान, 21 जन्म में कोई ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें तुमको बच्चा पैदा न हो, पुत्रवान भव ये असली वरदान हुआ, आयुष्मान भव कोई ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें अकाली मौत हो, तो आयुष्मान भव का सबका वरदान बाप आकर के, और संपत्ति बंधन देवताओं जैसी संपत्ति तो और किसी के पास होती है, बाकी सबसे भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, इसके लिए जाते हैं गीता सुना करके फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान हुआ, हर कृष्ण कहें कि भगवान होगा और कह देते हैं कृष्ण भगवान हुआ। ये शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग में दुनिया में समझते हैं कि कृष्ण की सोल ही दादा लेकर आज ब्रह्मा के रूप में भगवान उवाच करती है। वास्तव में भगवान उवाच नहीं है, भगवान उवाच कौन है? भगवान उवाच तो परमात्मा शिव है जो आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है। तो मनुष्य स्वर्ग नहीं बना सकता, नरक की दुनिया का विनाश नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े धर्म पिताए हुए इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक जैसे, वो भी पुराने पन का विनाश नहीं कर सकते। इसके लिए सामना करना होता है, मुकाबला करना होता है पुराने पन का। विनाश कोई नहीं कर सके पुराने बनने का, तो जब विनाश नहीं कर सके अपनी धारणाओं की इच्छा न करी तो फायदा क्या होगा? विषता भरा हुआ घड़ा हो और उसमें लोटा दो लोटा दूध डालते जाओ तो क्या रहेगा? विषता बीज ही रहेगा ना? तो भले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए इस दुनिया में, उन्होंने आकर के अपने धर्म की स्थापना की, लेकिन दुनिया बिगड़ती चली गई या सुधरती चली गई? और ही बिगड़ती चली गई, उससे सुधार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराने पन का विनाश किया। घर के अंदर का कचरा निकाला ना जाए और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुएं संभालते रहे सजाते रहे तो घर का हाल क्या होगा? तो कुछ ही फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर कचरा और बदबू तो पहले ही भरी हुई है। ज्ञान सागर बाप एक ही है जो आकर के भगवान के रूप में परमात्मा पाठ के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। कृष्ण से भगवान होगा? ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं, और कृष्ण ऊपर वाला है या नीचे वाला है? वो तो बच्चा बन के पैदा होता है ना, कोई से जन्म लेगा कि ऊपर से चटकेगा? जन्म लेगा ना, तो जिससे जन्म लेगा वो हृदय का हुआ ना, तो ऊपर वाला कौन हुआ? उसका बाप उसको जन्म देने वाला ऊंचा हुआ या कृष्ण ऊंचा हुआ? उसका बाप जन्म देने वाला उससे ऊंचा। तुम आत्मा रूप बदलती हूँ, बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे और किसन में आएंगे? बैल पर तो नहीं आएंगे, बैल पर से आएंगे क्या? परमात्मा आएगा तो साधारण मनुष्य तन में आएगा या बैल के रूप में पांच बजाने वाले में आएगा? जानवरों में आएगा, जानवरों को नहीं आकर के सुधारता है। जब मनुष्य सुधरते हैं तो जानवर अपने आप से मिल जाते। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफी को रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ, तो मैं कोई बैल कच्छ अथवा मत्स्य में नहीं आता हूँ। मनुष्यों में भी कोई होते हैं बैल की तरह पालते में जाते, जैसे बैल होता है ना जानवर बुद्धि, तो जो जानवर बुद्धि होता है वो अपनी जानवरियत जरूर दिखाएगा टाइम आने पर, ऐसा माहौल बनने पर। और मनुष्य कुछ सोचेगा, मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मन का उपयोग करे वो मनुष्य, मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु मन आज ब्रह्मा, आज ब्रह्मा की जो सच्ची संतान होगी वो मनन चिंतन मंथन जरूर करेगी। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है तो वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, मनु की औलाद औलाद नहीं है, जानवर है। तो पहले पहले मनुष्य शक्ति रखी है, ऐसे नहीं बैल के द्वारा आकर के बैलों की शक्ति रखते हैं, नहीं गायन है प्रजा के साथ ब्रह्मा द्वारा यही शक्ति रखी है। तो दो बात हो गई, एक तो परमपिता परमात्मा की लो जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाला बाबा आओ, फिर कहते हैं ज्ञान पूरी प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान पूरी है वो बाप ही है, बाप वो है बाप, ब्रह्मा के तन में बैठे हुए बोल रहे हैं फिर वह बात क्यों कह दिया है? जरूर आने वाला जो भविष्य का पार्ट है उसके लिए ये इशारा दिया कि वो ज्ञान सूर्य बात, जिस ज्ञान सूर्य के उदय होने पर उसके सामने अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा टिक नहीं सकता। अज्ञान अंधकार फैलाने वाले जो चोर डकैत है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, सामने नहीं आ सकते। क्या अंधकार किसी के सामने रह सकता है? नहीं रह सकता है। पीछे पीछे से चाहे जितना भी बवंडर मचाए लेकिन सामने आकर के बात नहीं कर सकते। ज्ञान सूर्य प्रगटता अज्ञान अंधोविनाशी किस समय की बात है? वर्तमान संघ में की ये बातें हैं। और वो हिंदी कोई सूची है क्या? उसकी कोई फूल रोशनी है क्या? कौन सा सूर्य? ज्ञान का सूर्य, ज्ञान की रोशनी है। कि फूल रोशनी की तो बात ही नहीं, न फूल अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान का उसे कहा जाता है जिसमें बाप का ज्ञान ही न हो, बाप की जानकारी न हो। बाप को जानता है तो जानकारी है, ज्ञानी है, और बाप को नहीं जानता है तो अज्ञानी। जो बाप को नहीं जानेगा तो अपने स्वरूप को भी नहीं जानेगा। बाप को जाना तो अपने स्वरूप को भी जाना। शिक्षक गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधोविनाशी, जो सबसे ऊंचे है वो बाप है। इस खेल को भी समझना चाहिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ऊंची से ऊंची पाठधारी कौन होता है? हीरो पाठधारी। तो वो ऊंची से ऊंच पाठधारी है हीरो पाठ बजाने वाला, इसको हीरा कहते हैं। हीरो पाठधारी हीरा का पाठ बजाने वाला जरूर ज्ञान सूर्य ही है। बाइक पर ही ये खेल, बाकी वो तो बाइक लाते हैं दूसरे घर। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर वन है। देवी धर्म और दैवी कर्म से वहाँ भ्रष्ट कोई होता नहीं। सतयुग में कोई भ्रष्ट नहीं होता और कलयुग में कोई श्रेष्ठ नहीं होता। कलयुग में सब पतित भ्रष्टाचारी होते और सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी पावन होते हैं। हाँ, नंबर वार हो सकते हैं। कभी की दुनिया में नंबर वार कथित भ्रष्टाचारी कहे जा सकते हैं। परसेंटेज होती है अधिकारियों की, बाकी ऐसे नहीं तो कोई निर्विकारी हो गया। इस दुनिया में कोई भी निर्विकारी नहीं हो सकता। बात नहीं देवी देवता श्रेष्ठ धर्म था, अब भ्रष्ट धर्म कर्म भ्रष्ट है। आप समझाते हैं मुख्य धर्म चार है। सबसे पहले है देवी देवता। सत्य की स्थापना का कर्तव्य है कि एक बात ही करेंगे, पता वो समझते हैं कि अनेक देहधारी धर्मगुरु आपस में मिलकर के स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। लेकिन बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं एक बाप ही स्वर्ग स्थापन करेंगे, बाकी कोई स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। तो बाप का मतलब क्या हुआ?